शुक्रवार 8 जुलाई दिनभर सुनने वालों को निखिल का नमस्कार। अमेरिका के डेलस में काले लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला, 5 पुलिस कर्मियों की मौत, एक हमलावर ने खुद को भी गोली मारी, राष्ट्रपति बराक ओबामा।
I believe that I speak for every single American when I say that we are horrified।
गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन कड़ी शर्त के साथ। चलो रियो में आज सुनिएगा, भारत ने पाकिस्तान से कैसे लिया था रोम का बदला टोक्यो में।
सामने में क्लॉक लगी हुई थी और मैं उस क्लॉक की तरफ घड़ी घड़ी देख रहा था, वो मेरे सामने की तरफ पड़ती थी, पाकिस्तान गोल की तरफ। टाइम ऐसे मालूम पड़ता था कि जब फिर देखूं जरा बाल उस पाकिस्तान साइड में जाए तो मालूम पड़े कि टोटल 20 सेकंड हुए हैं, मालूम ऐसे पड़े कि जैसे 3-4-5 मिनट गुजर चुके हैं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के डेलस शहर में एक शांतिपूर्ण रैली के अंत में पुलिस पर गोलियां चलाई गई, जिनमें 5 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। 7 पुलिस अधिकारी और 2 आम लोग इस हमले में घायल हुए हैं। पुलिस के 2 काले लोगों को गोली मारने के विरोध में ये रैली निकाली गई थी। अमरीकी पुलिस का मानना है कि इस हमले में 4 लोग शामिल थे, इनमें से 2 लोगों के पास राइफलें थीं और इन लोगों ने घात लगाकर ऊंचाई से गोलियां चलाईं। 3 बंदूकधारियों को हिरासत में ले लिया गया है। डेलस शहर के मेयर माइक राउलिंग्स ने बाद में बताया है कि 4th हमलावर की मुठभेड़ में मौत हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक हमले वाले इलाके में बम छुपाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सिटी सेंटर में विस्फोटकों के लिए तलाशी अभियान चलाया। शहर में कई सड़कों को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस हमले की निंदा की है। चीन ने दक्षिणी कोरिया में हाईटेक मिसाइल रक्षा तंत्र तैनात करने की अमेरिका और दक्षिण कोरिया की योजना पर आपत्ति जताई है। इस रक्षा तंत्र को तैनात करने से उत्तर कोरिया के मिसाइलों का पता लगाकर उन पर वार किया जा सकेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगली ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के इस कदम से क्षेत्र में सैन्य असंतुलन पैदा होगा। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड की तैनाती से कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार रहित करने की दिशा में कोई मदद नहीं मिलेगी और न ही इससे शांति और स्थिरता में इजाफा होगा। ऐसे कदमों से सभी पक्षों के बीच बातचीत से हल निकालने के रास्ते में अड़चने पैदा होंगी। चीन के सामरिक हितों और क्षेत्र के सामरिक संतुलन के भी ये कदम खिलाफ है। हम दक्षिण कोरिया और अमरीका के थार्ड प्रणाली को तैनात करने के खिलाफ हैं। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया में कई दिन से लगे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी की कमी और थकान की वजह से इन लोगों की मौत हो गई है। जावा द्वीप पर रमजान के महीने के अंत में छुट्टी मनाने निकले लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक ही ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसमें लाखों लोग फंस गए। इंडोनेशिया के मीडिया में कहा जा रहा है कि मरने वाले लोग बुजुर्ग थे और एक बच्ची की मौत कथित तौर पर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका गोलीबारी के कारण एक बार फिर अशांत है। ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं डेलस की, जहां 2 काले लोगों की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान 5 पुलिस वालों को गोली मार दी गई। पुलिस पर हमला करने वाले एक शख्स ने मुठभेड़ के दौरान उसकी भी हत्या कर दी गई। पुलिस की दौरान जो है एक बम विस्फोट हुआ और उसमें वो मारा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 3 बंदूकधारी थे जिन लोगों ने हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है। गोलीबारी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई और इसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई थी। और अब सुनते हैं हम वो रिपोर्ट वैभव श्रीवास्तव की, जिसमें वो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं।
अमरीकी राज्य टेक्सस के शहर डैलस में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बंदूकधारियों ने 5 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस घटना को घिनौना और सुनियोजित बताया है। नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रपति ओबामा ने पुलिस अफसरों के मारे जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा,
मुझे लगता है मैं हर अमरीकी की ओर से बोल रहा हूं कि एक भयानक घटना थी और हम डैलस के सभी लोगों और पुलिस विभाग का साथ देने में एकजुट हैं। पुलिस के अनुसार इस वारदात के कई संदिग्ध हैं और इन लोगों के गलत इरादों के बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है, पर पुलिस अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का हमला या इस जैसी वारदात करने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। डैलस पुलिस के प्रमुख डेविड ब्राउन ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो ऐसे साहसी और बहादुर लोगों के साथ काम करते हैं जो जनता की सेवा में जान देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने हिरासत में लिए एक संदिग्ध से हुई बातचीत के बारे में बताया।
The suspect that we are negotiating with has told our negotiators that
उस संदिग्ध ने हमसे कहा था कि हमारा अंत नजदीक है और वो हम जैसे कई और लोगों को मारेगा। उसने कहा कि गैराज में और शहर के कई इलाकों में उन लोगों ने बम प्लांट कर रखे हैं।
डैलस पुलिस के प्रमुख डेविड ब्राउन के शब्द। उन्होंने ये भी बताया कि बंदूकधारियों की योजना ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को मारने की थी। मार्च आयोजित करने वालों में से एक रेवरेंड जेफ हुड ने डैलस मॉर्निंग न्यूज को बताया कि गोलीबारी होते ही उन्होंने लोगों को बचाव के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा।
मैं लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश करते हुए वहां से भागा और मैं अपने आप को भी चेक कर रहा था कि कहीं मुझे गोली तो नहीं लग गई है।
मार्च आयोजित करने वालों में से एक रेवरेंड जेफ हुड के शब्द। वहीं नस्लवाद के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन और इसमें हुई पुलिस अफसरों की मौत पर बयान देते हुए अमरीकी मानव अधिकार नेता रेवरेंड जेसी जैक्सन ने कहा कि इस तरह पुलिस कर्मियों को मारना विरोध का सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका में अलग अलग जगहों पर फैले हुए काले लोगों के समुदायों को सहारे और निवेश की जरूरत है।
हमें सामाजिक बहिष्कार नहीं चाहिए, हमारी आवाज को सुना जाना चाहिए। हमें नौकरियों, प्रशिक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है। हमें साबित करना है कि हम उत्पादक हैं। हमें निवेश और व्यवसाय की जरूरत है।
अमरीकी मानव अधिकार नेता रेवरेंड जेसी जैक्सन के शब्द। पुलिस टीम गोलीबारी की जगह पर संदिग्ध के छोड़े गए एक उपकरण की जांच कर रही है। मिनेसोटा में फिलैंडो कैस्टल और लुइजियाना में आल्टन स्टर्लिंग की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इन दोनों घटनाओं के वीडियो वायरल होने से पूरे अमरीका में नस्लवाद को लेकर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। ये दोनों मौतें और हाल ही में हुई अफ्रीकी अमरीकियों के खिलाफ जानलेवा हमले की घटनाएं डैलस में हुए इस विरोध प्रदर्शन का कारण बनी।
रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव और इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन में ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, इस वक्त डैलस के क्या हालात हैं? और दूसरा ये भी कि पहले ये खबर आ रही थी कि एक जो हमलावर था उसने खुद खुशी कर ली थी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उसे मारा गया है।
जी हाँ, देखिए, अब से करीब 1.25 घंटे पहले पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बातें वही दोहराई हैं जो कि 5 पुलिस वालों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं, 3 संदिग्ध अफराद जो संदिग्ध लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें एक महिला भी हैं। पुलिस ने किसी हमलावर की पहचान या नाम नहीं जारी किया है। उनका ये कहना था कि संदिग्ध हमलावर जो मारा गया है उसके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करने की कोशिश की गई कि वो हथियार डाल दे, लेकिन जब वो नहीं माना तो एक बॉम्ब रोबोट के जरिए धमाका किया गया जो आमतौर पर कई बार इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लगता है कि पुलिस को के खुद जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है, और उस धमाके में वो मारा गया। और जैसा कि आपने बताया, पहले खबर आ रही थी कि उसने खुद को गोली मारी थी और पुलिस ने कहा कि ये गलत खबर थी। उसके साथ हुई बातचीत के दौरान उसने ये कहा कि वो हाल में जो 2 काले लोगों को अफ्रीकी अमरीकी लोग पुलिस के हाथों मारे गए हैं उससे वो खासा नाराज है। वो गोरे लोगों, खास तौर से ज़्यादा गोरे पुलिस वालों को मारना चाहता है और वो अकेले ही काम कर रहा है, किसी और गिरोह के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसने कई जगहों पर बम लगाए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने अभी तक कोई बम नहीं बरामद किया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि सभी हमलावर या इस हमले में जो भी लोग शामिल थे वो सब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।
ब्रजेश, काले और गोरे लोगों के बीच अमेरिका में तनाव तो लंबे समय से है, लेकिन इस तरह से जो हमला हुआ है वो शायद पहली बार हुआ है। और क्या ये जो तनाव है वो किसी क्रांति या विद्रोह या इस तरह की किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है?
क्रांति या विद्रोह की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जाहिर है ये तनाव काफ़ी बढ़ेगा और समाज में भी जो खास तौर से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सुधार की मांग और बढ़ेगी, और दूसरी तरफ बंदूकों पर लगाम कसने की मांग और बढ़ेगी। इसको अगर ये बात कही जा रही है कि पुलिस पहले से कहती रही है कि जब भी कोई खासतौर पर अफ्रीकी अमरीकी लोगों के खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई होती है, कोई गोली अगर उसमें किसी तरह का का बल प्रयोग होता है, तो बिना किसी छानबीन के आमतौर पर जो राजनेता है वो निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि पुलिस की गलती होगी, और ये बयान जो है इसकी वजह से पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। राष्ट्रपति ओबामा ने भी अमरीकी क्रिमिनल जस्टिस में ये बात कही कि एक नस्ली पूर्वाग्रह है, रेशियल बायस है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, इसका ये कोई वजह नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स से नफरत की जाए। वहीं डैलस के पुलिस चीफ का भी ये कहना था कि पुलिस और शहरियों नागरिकों के बीच जो एक खाई है, जो एक डिवाइसिवनेस है, उसे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हर दिन पुलिस को ये लग रहा है कि उन्हें पूरे समाज का साथ नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है कि तनाव जो है अभी फिलहाल काफ़ी बढ़ा हुआ है इस बीच में, और कोशिश इस बात की हो रही है कि ये काबू में रहे।
जी ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम अपने दूसरे कार्यक्रम में भी आपसे और इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुख दूसरी खबरों का।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या सुपरस्टार स्टेटस का नाजायज फायदा उठाते हैं फिल्मी हीरो? चिंकारा और हिरणों का शिकार हो, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का मामला, या फिर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप, मशहूर अभिनेता कानून की जद से बार बार कैसे बच जाते हैं? क्या लोकप्रियता से कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल जाता है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी जरूर फोन करिएगा। और अब अगली खबर। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल को देशद्रोह मामले में जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ एक कड़ी शर्त ये लगा दी है कि अगर वो जेल से रिहा होना चाहते हैं तो इसके लिए 6 महीने राज्य से बाहर रहना होगा। हार्दिक पटेल पर अभी कई और मामलों में सुनवाई चल रही है। पाटीदार आंदोलन समिति के प्रवक्ता हरिकेश पटेल ने इस बारे में कहा,
आज कोर्ट में जो अहमदाबाद राजद्रोह और सूरत राजद्रोह का जो मुकदमा चल रहा था उनका जजमेंट आया, और उसमें हार्दिक पटेल को जामीन दी गई है। 6 महीने गुजरात से बाहर रहने की शर्त पे उनको जामीन दी गई है। और दूसरा एक केस है जो विसनगर का तोड़फोड़ का केस है, उसके अंदर इस महीने की 11 तारीख को सुनवाई है।
इस खबर पर हम अगले कार्यक्रम में भी अपनी चर्चा करेंगे। पाटीदार आंदोलन समिति के प्रवक्ता हरिकेश पटेल की आपने आवाज़ सुनी। और अब बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चलो रियो की ओर। चलो रियो में आज कहानी टोक्यो ओलंपिक की, जब मोहिंदर लाल के पेनल्टी स्ट्रोक की बदौलत भारत ने पाकिस्तान से रोम ओलंपिक का बदला लिया था, और किस तरह म्यूनिक ओलंपिक में 4 कुश्तियां जीतने के बाद भी पहलवान सुदेश कुमार को 4th स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा। क्या थी ये सब कहानियां, सुनिए रेहान फजल से।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1964 के ओलंपिक खेल पहली बार एशिया में आयोजित किए गए थे। उन खेलों से पहले भारत ने फ्रांस में लियोन में हॉकी प्रतियोगिता जीती थी, जिसमें विश्व की करीब करीब सभी चोटी की टीमों ने भाग लिया था। शुरू के मैचों में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पहले मैच में उसने बेल्जियम को 2-0 से तो हरा दिया, लेकिन जर्मनी और स्पेन से उसके मैच 1-1 गोल से बराबर रहे। फिर भारत ने हांगकांग को 6-0, मलेशिया को 3-1 और हॉलैंड को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से 0-1 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने 3-1 की जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। उधर दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जर्मनी को हराया। पाकिस्तान के पास हॉकी खिताब था, जबकि भारत हॉकी खिताब पुनः हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैच से पहले पाकिस्तानी खेमे में क्या स्थिति थी, याद करते हैं उस टीम में भारतीय टीम के लेफ्ट हाफ गुरबख्श सिंह।
जब हमारा मैच शुरू होने से पहले
कुछ मैच डिले हो गया क्योंकि थर्ड फोर्थ पोजीशन का मैच कुछ एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और सडन डेथ में चला गया। तो हम लोग दोनों टीमें एक साथ वाले कमरे में थी और वहां पर जब हमने पाकिस्तानी टीमों का देखा तो उनका हमको ये ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे वो बहुत नर्वस नजर आ रहे हैं। और जब मैच शुरू हुआ तो उसमें शुरू में ही पाकिस्तान कोई 7-8 मिनट बहुत अच्छा खेला, उसमें उनका राइट आउट खालिद महमूद, लेफ्ट आउट मोतियुल्ला, लेफ्ट हैंड साइड असद मलिक बहुत अच्छा खेले। मैं इस टूर्नामेंट में क्योंकि एक्चुअली एज ए फुलबैक गया था लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में वहां पर हमारा जो लेफ्ट हाफ था वो कुछ फेल हो गया, वो अच्छा नहीं खेल पाया, तो टीम के लिए मेरे को ये रिक्वेस्ट की गई टीम कमेटी ने कि मैं लेफ्ट हाफ खेलूं।
नर्वस होने के बावजूद शुरू के 10 मिनटों में पाकिस्तान की टीम भारत पर छाई रही, फिर खेल थोड़ा रफ हो चला। उस मैच में भारत के सेंटर फॉरवर्ड हरबिंदर सिंह कहते हैं,
सब लोग सहमे हुए थे कि पता नहीं आज ग्राउंड में क्या हो जाएगा क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं थे उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के। जब मैच शुरू हुआ तो उससे पहले टीम ने ये एक आपस में डिस्कस किया कि हम लोग ने ये टाइटल वापस लेना है और पूरे जोश के साथ खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम हालांकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉल शुरू करेंगे तो हम लोग ने पहले गेम रफ नहीं करनी क्योंकि रफ गेम होगी तो हम लोग अपना टेंपर लूज करेंगे तो ये टीम के हित में ठीक नहीं होगा। तो वही बात हुई जब मैच शुरू हुआ तो शुरू होते हुए मैंने बुली के साथ जब बॉल ले गया तो सेंटर ऑफ ने मेरे टांग पे पूरी स्टिक घुमा दी लेकिन मैं थोड़ा सतर्क था तो मैं जंप मार के बच गया। तो उसके बाद पहले 5-7 मिनट जो मैच हुआ वो एक किस्म का झगड़ा ही होता रहा, गाली गलौच होती रही आपस टीम में। तो जब अंपायर्स ने देखा कि ये मैच आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उन्होंने दोनों टीम्स को लाइनअप करके इंग्लिश में कहा, जेंटलमैन ये हमारे पास 3 कार्ड हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड कार्ड। उन्होंने कहा कि हम लोग ये ग्रीन और येलो कार्ड बाहर भेज रहे हैं, हमारे पास अब सिर्फ रेड कार्ड है, अब जो भी अगर माइनर फाउल करेंगे आप तो आपको स्ट्रेट वे रेड कार्ड मिलेगा, रेड कार्ड मीन यू आर आउट ऑफ द मैच।
छोटे छोटे पास, ड्रिबलिंग, वेव्स में आक्रमण, पाकिस्तान की ओर से ज्यादातर आक्रमण लेफ्ट फ्लैंक से बढ़ रहे थे। लेफ्ट आउट मुतियुल्ला और लेफ्ट हैंड असद मलिक बार बार भारत की 25 गज की रेखा पर हमला कर रहे थे लेकिन सेंटर हाफ चरणजीत सिंह और फुल बैक प्रतिपाल सिंह उनके हर हमले को नाकाम कर रहे थे। बहरहाल हाफ टाइम तक स्कोर था 0-0। दूसरे हाफ के 5वें मिनट में भारत ने लेफ्ट फ्लैंक से हमला बनाया, पाकिस्तान के कप्तान आतिफ के खिलाफ अंपायर ने ऑब्स्ट्रक्शन का फाउल लिया और भारत को पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। आगे की कहानी जसदेव सिंह की जुबानी।
पीटर ने गोल लाइन से पुश किया और सेंटर हाफ चरणजीत टीम के कप्तान ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरी तरह रोका, स्टॉप किया और फिर तो प्रतिपाल सिंह थे लंबे ऊंचे कद के, पतले दुबले छरहरे शरीर के, तेज जो हिट लगाया, गेंद जो है गोलकीपर हमीद थे पाकिस्तान के, उनके पैड से टकरा कर और लगता था कि लाइन को उस पार जाएगी लेकिन मुनीर दर ने उसे अपने पांव से रोक दिया। बैक के स्थान पर थे राइट बैक मुनीर दर। उसके बाद लंबी सीटी बजी और दर्शकों में अपार उत्साह, भारतीय दर्शकों में और खिलाड़ी भी उछल पड़े।
भारत ने पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए राइट हाफ मोहिंदर लाल को चुना। कोमासावा स्टेडियम में बैठे करीब करीब हर दर्शक की निगाहें मोहिंदर लाल पर थी। भारत में उस मैच की कमेंट्री सुन रहे हर श्रोता की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मशहूर कॉमेंटेटर जसदीप सिंह याद करते हैं,
जब वो पेनल्टी स्ट्रोक लेने जा रहे थे, मुझे भी याद है, थोड़ा भारी है वो भी और ज्यादा लंबे ऊंचे नहीं है, तो वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उनमें तनाव नहीं है और जैसे झूमता हुआ कोई इंसान जाता है ना, एक गजराज की सी चाल थी मोहिंदर की उस दिन। मुझे लगता है वो अपने में आत्मविश्वास पैदा कर रहे थे। वो सीन मैं कभी नहीं भूलता जब मोहिंदर ने आराम से जाकर अंपायर की तरफ देखा, उसके बाद जब सीटी बजी मोहिंदर ने अपना पांव आगे करके और गेंद को नेट के बाएं कोने में उछाल दिया था और हमीद बिल्कुल सकते में, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था।
मोहिंदर लाल से मैंने एक बार अनुरोध किया था कि उस क्षण को याद कीजिए जब आपने पाकिस्तान पर वो विजयी गोल दागा था।
हमने बड़ी प्रैक्टिस की थी इसकी पेनल्टी स्ट्रोक की वहाँ जाने से पहले। उस वक्त ये था, एक रूल ऐसा था, गोलकीपर अपनी कंधे से ऊपर के स्टिक ले जाकर गेंद नहीं रोक सकता था, अगर रोक भी लेता तब भी गोल है, ये रूल था उस वक्त। इसलिए उस वक्त यही एडवांटेज था कि आप ऊंचा मारो, वो हाथ तो जा ही नहीं सकता उसका राइट की तरफ, उसकी स्टिक ही होती है उसका हाथ में। नेचुरली शॉट बहुत स्ट्रांग था, गोलकीपर को तो नजर ही नहीं आया।
बाद में मोहिंदर लाल का बार्सिलोना में निधन हो गया। इस गोल के बाद पाकिस्तान के फॉरवर्ड्स में और जान आ गई लेकिन भारतीय रक्षण अडिग रहा, भारत भी रह रहकर आक्रमण करता रहा। हरिपाल कौशिक ने पाकिस्तानी डी में गेंद को कैरेट कर दिया, दर्शन सिंह भी एक आसान मौका चूक गए। आखिरी 7-8 मिनटों में पाकिस्तानी फॉरवर्ड्स ने भारतीय गोल पर हमलों की झड़ी लगा दी लेकिन भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जिब्राल्टर की चट्टान की तरह डटे रहे।
वो क्षण मुझे याद है कि उनके वो राइटिंग ने डी के अंदर से बॉल मारा और वो सीधा मेरे सर के ऊपर आया, तो अगर मैं सर हटा लेता या हाथ बढ़ाने का उस टाइम समय नहीं था। मैंने यही किया कि चाहे कुछ भी हो जाए बॉल गोल में नहीं जाना चाहिए, और मैंने उस टाइम पे सर हटा दिया कि मुझे काफी चक्कर भी आ गए, हालांकि मार भी लगा। तो यही कारण था कि हमारी भारत की जीत हुई।
खेल खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी, गेंद लगातार भारतीय डी में, पाकिस्तान के सभी 10 खिलाड़ी उसके अंदर, गोल लाइन पर शंकर लक्ष्मण, प्रतिपाल सिंह, गुरबख्श सिंह और मोहिंदर लाल। खड़ी किस हुई धीरे धीरे बढ़ती हुई, गुरबख्श सिंह याद करते हैं।
एक सामने में क्लॉक लगी हुई थी और मैं उस क्लॉक की तरफ घड़ी घड़ी देख रहा था, वो मेरे सामने की तरफ पड़ती थी पाकिस्तान गोल की तरफ। टाइम ऐसे मालूम पड़ता था कि जो जब फिर देखूं जरा बॉल उस पाकिस्तान साइड में जाए तो मालूम पड़े कि टोटल 30 सेकंड हुए हैं, मालूम ऐसे पड़े कि जैसे 3-4-5 मिनट गुजर चुके हैं। तो वो जो 5-7 मिनट थे वो एक ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे आधा घंटा हो गया है।
जैसे ही फाइनल विसिल बजी सभी दर्शक मैदान में घुस आए। उस मैच के हीरो गोलकीपर शंकर लक्ष्मण ने बीबीसी के लिए खास तौर से उस मैच को याद किया।
सर उस टाइम पर तो बहुत ही ऐसा क्षण हो गया कि हमने एक वार जीत लिया समझ लीजिए। पूरी पब्लिक जापानीज और हिंदुस्तानी ग्राउंड के अंदर आ गई और मुझे तो उठा लिया गया। वहाँ पे उठाने के बाद में मेरे हॉकी स्टिक और हैंड रोज वगैरह तो किसने लिया क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे एकदम उठाते हुए ड्रेसिंग रूम में लेके चले गए सब।
दूसरे ही दिन भारतीय टीम स्वर्ण पदक के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली में भारतीय टीम को जुलूस के रूप में लाल किले ले जाया गया। सेंटर फॉरवर्ड हरबिंदर सिंह को वो दिन अभी तक याद है।
हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे रात के 9 बजे के करीब, डोमेस्टिक एयरपोर्ट थी उस वक्त, यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, कोई इतनी सिक्योरिटी वगैरह तो होती नहीं थी। एयरपोर्ट का जो जब जहाज खड़ा तो रनवे पब्लिक से भरा हुआ था, इतनी पब्लिक थी कि आप देखिए जहाज के जब दरवाजे खुले तो पब्लिक सारी अंदर जहाज में आ गई। तो हमारे साथ तो उसमें कुछ अमरीकन एथलीट भी जा रहे थे जिन्होंने आगे जाना था, जहाज आगे अमरीका जाना था। तो जब उन्होंने इतनी पब्लिक देखी तो पूछने लगे भी ये इतनी मतलब क्यों शोर क्यों इतना हुआ, सो नच नाइस। तो हमने उनको बताया कि इंडिया की हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती है तो इसलिए they are celebrating. तो देर उस भाई तो कहने लगे वी हैव वन मोर देन 100 मेडल्स, नोबडी विल कम टू रिसीव अस, बट यू हैव वन गोल्ड मेडल एंड सो मच रिसेप्शन। तो हमने बोला आवर वन गोल्ड मेडल इक्वल टू योर 100 गोल्ड मेडल्स।
पिछले सप्ताह हमने आपको बताया था किस तरह पदक फिसला था मिल्खा सिंह के हाथों से। कुछ इसी तरह का वाकया हुआ 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फ्लाईवेट में लड़ रहे पहलवान सुदेश कुमार के साथ। जिस तरह से सुदेश मुकाबले पर मुकाबले जीत रहे थे, 31 अगस्त 1972 को भारत के लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी लगाई, अगर सुदेश जापान के कियोमो काटो को हरा देते हैं तो वो भारत के लिए ओलंपिक कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक जीतेंगे। सुदेश कुमार ने उन शुरुआती मुकाबलों को याद करते हुए बीबीसी को बताया।
सबसे पहले मेरी कुश्ती हुई थी अयोध्या था, जो वर्ल्ड चैंपियन 1970 में मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरी बहुत पोजीशन आई थी उसके अंदर भी। उसके अंदर वो गोल्ड मेडल लिया था उसने, टर्की का था, उसको मैंने 1 पॉइंट से आया। दोनों कुश्ती मारी 9 मिनट, बड़ी फास्ट चली। लास्ट में मैंने गधा जो दांव होता है उसको मैंने मारा तो वो डेंजर पोजीशन में गया, मुझे 2 मिले उसको 1 मिला, उसी वही कुश्ती खत्म हो गई। दूसरी कुश्ती हुई मेरी कोरिया से, कोरिया को मैंने अकड़ बग्गा एक दांव होता है वो मैंने मार के उसको चित किया मैंने।
पदक की होड़ में आने के लिए सुदेश का मुकाबला हंगरी के हेनरिक गाल से हुआ। सुदेश ने निकाल दांव लगाते हुए गाल को 3 मिनट 17 सेकंड में चित कर दिया।
उसमें वो बड़ा अच्छा था, वो तो फर्स्ट आने के उसके चांस थे। कुदरती बात थी कि वो मैं पट घुसा, मैंने योग करके मैं खुद ही पट घुस गया और एक मेरा दावा निकाल, वो मेरा ऐसा पैट दांव था कि उसमें अगर एक बार घुस जाऊ ना तो भगवान भी बचाना चाहे तो नहीं बच सकता। उसको ऊपर से उठा के मैंने धैड़ मारा तो बैट पे लेट आ गया, धचका लगा उसी गर्दन में चोट आ गई, वैसे हट गया।
अब सुदेश का मुकाबला जापान के कियोमी काटो से था। पहले राउंड में दोनों पहलवान 3-3 अंक से बराबर थे, लेकिन अचानक सुदेश को एक चेतावनी और काटो को एक अंक दिए जाने से कुश्ती का रुख बदल गया। 7वें मिनट में काटो सुदेश से 2 अंकों से आगे थे। सुदेश ने एक बार फिर निकाल दांव लगाया लेकिन जापानी उसे बचा गया। कुश्ती के अंतिम क्षणों में सुदेश ने काटो को करीब करीब चित कर दिया था, लेकिन समय समाप्त होने के हूटर ने काटो को बचा लिया।
मेरे उसके पॉइंट ना जी 3-3 पॉइंट हमारे बराबर थे, मैं थोड़ा सा उससे बच के लड़ा था और इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी, थोड़ा बचने से ना वो मेरे अगेंस्ट पॉइंट दे देंगे। उस पॉइंट को कवर करने चक्कर में वो एक बार पकड़ गया मेरे को, वही कुश्ती खत्म हुई। बैंकॉक में भी एशियन गेम में मेरी कुश्ती हुई थी उससे, उससे मैं एक ही पॉइंट से वहां भी आ गया था मैं। अब वहां तो मैंने उसको एक भाई दाव था मार के मैंने चित भी कर लिया था, दबा नहीं मेरे से। उसने भी जाए देखो जब वहां से आया कुश्ती जीत के तो भाग बैठ के हो गया वो कुश्ती मारे, अपने कमरे से अपनी घड़ी आया वो और घड़ी आके मेरे को जो गिफ्ट, तो मैं कहा नहीं नो 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 नो, कहते नो नो प्लीज। उन्हें घड़ी दी, वो घड़ी मेरे को 15-16 साल तक है मेरे पास।
सुदेश का अगला मुकाबला रूस के अलखवर्दियेव से था, लेकिन उससे एक रात पहले सुदेश बीमार हो गए।
हम 5 बच्चे थे लास्ट में, नॉर्थ कोरिया का जो था वो 5वें नंबर पे था, उसको बाई मिल गई, वो ऑटोमेटिक थर्ड हो गया। मेरी जो कुश्ती हुई ना वो दूसरी कुश्ती हुई एशिया से। उसी रात को हम बीमार हो गए, थोड़ा खाना ज्यादा खाइया, वेट सुबह देना था तो मेरा वेट नहीं आया तो सारे हिंदुस्तान ने बदनामी होगी। हमने ना रूज मोशन की टैबलेट खाई, वो टैबलेट ऐसी होगी हमें 3 बजे के बाद हम तो रात भर सोए नहीं। अब वो पेट में से ना कट कट के खून भी गिरा हमारे, मतलब पेट में प्याज ही कुछ नहीं था। अब वो खाई पेट खाई हमने, वो गलती हमारे से हुई। वो वहाँ से आने बाद फिर बड़ी मुश्किल से गुरु जी उठा के मेरे को वेट तो कराया, वेट कराया तो मेरा आधा किलो कम निकला, 51.5 निकला, जबकि मेरा 52 चाहिए था। अब वहाँ से हम भूखे थे, हम भाग के गए वहाँ पर डाइनिंग हॉल में, हमने जाते हैं ना 5-6 गिलास जूस पी गए, जबकि हमें ठंडा पीना नहीं चाहिए था। ये मैं सब पैगवानों को आज गाइड करता हूँ, कभी वेट घटाने के बाद कभी भी ठंडा नहीं पीना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। और उस वजह से अब ठंडा पियो, फिर ठंडा पिए जाओगे आप और फिर वो मोशन हो जाएंगे, फिर आपको जो भी अंदर थोड़ा बहुत होगा वो भी निकल जाएगा। तो पैर में सब नशे उसे सब ये काम करना बंद कर दिया। मैं तो बड़ी मुश्किल से गद्दे पे खड़ा होया, तो उससे जीतने का तो मतलब ही नहीं बनता।
इस तरह सुदेश के हाथ से पदक जाता रहा और उन्हें 4थे स्थान से संतोष करना पड़ा। पहली बार विदेश गए उनके गुरु हनुमान को इसका बहुत अफसोस हुआ। गुरु हनुमान ही सुदेश कुमार को चुन कर लाए थे और उन्हें सिखा कर विश्व स्तर का पहलवान बनाया था।
कुश्ती में ऐसे है कि मेरे जो पापा थे ना वो पहलवानी करते थे और गुरु हनुमान के वो गुरु के चाहिए थे, गुरु यशाज सिंह के ये पट्टे थे। तो हमारे सब्जी मंडी में कुश्तियां होती थी तो मैं कुश्ती करता नहीं था। एक गुरु हनुमान अखाड़े में एक लड़का श्री किशन होता था, उसको गुरु जी है वहां लड़ाने के लिए उस अखाड़े में। मैं ऐसे कच्चे में घूमा था, मैं गड़ूंगा तेरे से। और कुदरती बात हुई कि जब हम फिजिकल ज्यादा करते थे, दौड़ तोड़ जाते थे, तो शरीर में रोच बहुत था मेरे, तो मैं कुदरती ना वो हाथ में ऐसे आ गया कि मैं छूट नहीं पाया वो, और मैंने उसको दबा के चित कर दिया। तो गुरु हनुमान जी का वहाँ स्वागत हुआ था, गुरु जी का बहुत नाम था उस टाइम में, तो उनका स्वागत जो किया ना वो हार ही मुझे पहना दिया गुरु जी ने। और मेरे बेटा किसका बेटा है, मैं जी पन्नगा जी का बेटा हूँ। कहता यार आप अखाड़े माना, फिर पापा को कि मैं अखाड़ा गया। तो वहाँ पर जो पैगवान गुरु जी करते थे वो गांव से आते थे, घी बादाम अपने खुद लेके आते थे। हमारे यहाँ तो दूध पीना है तो बादाम घी की तो बात है, मेरे पापा हॉकर थे, झजी पे सामान बेचते थे, तो हमारे पास कहाँ से आए। तो उन्होंने गुरु जी का वहाँ तो कुछ नहीं है, कहते तू अब घर नहीं जाएगा। तो मैं गुरु जी के बर्तन मांगता था और कपड़े धोता था, और गुरु जी पैगवानी कराते थे मेरे से, और जो सब्जी गुरु जी खाते थे वही मुझे खिलाते थे। और वहाँ रोटी बनाने का कोई नहीं था, तो गुरु जी खुद रोटी बनाते थे, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनती थी और बना के मुझे भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। और गुरु हनुमान की ऐसी जुबान थी, वो एक ऋषि मुनि आदमी था, जिससे कहते इसको रुस्तम बनाना है उसको रुस्तम बनाया। सतपाल तो कोई जब अखाड़े में आया था आप उसको देख के कह नहीं सकते पैगवान बन जाएगा कभी, और जो रुस्तम बने वो गुरु हनुमान का आशीर्वाद था। तो हाँ सख्त बहुत थे, 2 मिनट भी लेट हो गए तो चाबुक समाप्त।
चलो रियो में आज इतना ही, अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात और तब बात करेंगे मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 800 मीटर फाइनल में पहुंचने वाले श्री राम सिंह और जिम्नास्टिक्स में पहली बार परफेक्ट 10 स्कोर करने वाली नाडिया कोमनीची की। तब तक के लिए रेहान फतल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
रेहान फजल की खास पेशकश चलो रियो को आप कल सुबह विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। और दिन भर में विदा लेने से पहले सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि डेलस में गोलीबारी की योजना बनाने वाला संदिग्ध गोरे पुलिस अधिकारियों को मारना चाहता था क्योंकि वो पुलिस की गोली से काले लोगों की मौत को लेकर गुस्सा था। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेलस में पुलिस पर फायरिंग को घिनौनी कार्रवाई बताया। नेटो गठबंधन के नेताओं ने रूस के खतरे के जवाब में पोलैंड और दूसरे बाल्टिक देशों में 4,000 सैनिक तैनात करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी। चीन ने दक्षिण कोरिया में हाईटेक मिसाइल रक्षा तंत्र तैनात करने की अमरीका और दक्षिण कोरिया की योजना पर आपत्ति जताई। इस रक्षा तंत्र को तैनात करने से उत्तर कोरिया के मिसाइलों का पता लगाकर उन पर वार किया जा सकेगा। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में दोबारा मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।